Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है उमंग, उत्साह। भले ही आप कितनी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर का उमंग उत्साह कायम है तो आप महसूस करेंगे कि आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन वहीं मिलने लगेगा। साथ ही साथ आपसे लोग सीखेंगे भी, और आपसे सीख करके वो भी अपनी ज़िंदगी में उमंग उत्साह लेकर के आएंगे। तो ये है ना कितनी अच्छी बात। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति।
नमस्कार,
वेलकम टू आवर शो भाई जी। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी अंजाइना और हार्ट अटैक के बारे में। हमने उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स भी देखे और बहुत सारे रेमेडीज भी देखे। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि फर्स्ट एड के बाद सेकेंड स्टेप कौन सा होता है, किस तरीके से आप हार्ट डिजीज से आगे स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट क्या है, अगर आप हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
बहुत अच्छा है। ये जो बताया हमने आपको लास्ट टाइम
जी
कि एंजाइना और हार्ट अटैक ना, एंजाइना का क्या ट्रीटमेंट, तो सिंपल सॉर्बिटेट टेबलेट जीप के नीचे रखा, एक मिनट आराम किया, ठीक हो गया, चले आ गए। तो इसका ये हो गया स्टेबल एंजाइना। हार्ट अटैक का मैंने बताया कि हमने लास्ट टाइम, जैसे आपको 20 मिनट से ज़्यादा तकलीफ हो रही है, घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा मरने वाले हैं, तो हमने रेस्ट पहली बात, दूसरी ऑक्सीजन खुली हवा, तीसरी बात डिस्प्रिन की टैबलेट घोल के दे देना, पानी में डिजॉल्व करके इमीजिएटली दे देना, और सॉर्बिटेट टैबलेट जीप के नीचे रख देना, या नाइट्रोलिंगुअल स्प्रे आता है, एंटीजी स्प्रे कहते हैं, उसको जीप पे स्प्रे कर देना
जी।
तो ये उसके बाद पेशेंट को शिफ्ट कर देना हॉस्पिटल में, वहाँ ECG होगा, फिर डॉक्टर अपने आप उसके ब्लड टेस्ट, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, जो भी रिक्वायर्ड है वो करेंगे
जी।
अगर वहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है तो 3 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, राइट। एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टी कर देंगे। सपोज आपके पास ऐसा सेंटर है, ऐसा सेंटर आसपास कोई नहीं है आपके एरिया में, अगर है तो वहाँ इमीडिएट एंजियोप्लास्टी नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन या यूरोकाइनेस का इंजेक्शन देते हैं, जो कि क्लॉट जो बन गया है हार्ट अटैक जिसके कारण हुआ उसको डिजॉल्व कर सकता है। पर ये जो है इंजेक्शन सिर्फ 60% केसेस में, 50-60% केसेस को ही डिजॉल्व कर सकता है, राइट। ज़्यादा सभी केसेस को डिजॉल्व नहीं कर सकता इंजेक्शन ये वाला, स्ट्रेप्टोकाइनेस या यूरोकाइनेस, राइट। और ये 3,000 या 3,500 का इंजेक्शन आता है लगभग। ये रेट्स फिर वेरी कर सकते हैं एरिया टू एरिया, कंपनी टू कंपनी, राइट। ओके, देन कम्स टू फिर दूसरे इंजेक्शन जो मैंने बताया आपको लास्ट टाइम, एक रेटिप्लेज या टिनेक्टेप्लेज के इंजेक्शन, नए जो क्लॉट बस्टर्स हैं, वो 30,000 से 35,000 का इंजेक्शन आता है, वो हम जो है लगा सकते हैं। उसमें भी हम 60-70% ही क्लॉट डिजॉल्व होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर वो आप महंगा तो जरूर पड़ता है, किंतु वो उसका थोड़ा सा मार्जिनल बेनिफिट है। तो वो आप अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो वाला इंजेक्शन लगवा सकते हैं
जी।
तो ये जो है मुख्य इसका, उस समय की एक्यूट केयर में हम ये देते हैं। फिर और भी कुछ इंजेक्शन होते हैं जो हम हेपरिन के इंजेक्शन होते हैं, वो डॉक्टर्स फिर अकॉर्डिंगली एंटीजी ड्रिप या और जो भी दवाइयाँ पेशेंट को आवश्यकता है, अगर ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर को ठीक मैनेज करना होता है, हार्ट रेट ज़्यादा है हार्ट रेट को ठीक मैनेज किया जाता है, शुगर लेवल्स ज़्यादा है शुगर को मैनेज किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ तो दी ही जाती हैं रेगुलर हार्ट अटैक के पेशेंट को, जब भी हार्ट अटैक होता है
जी।
तो पेशेंट को अधिकतर 3 या 4 दिन ICU में रखा जाता है जब तक पेशेंट स्टेबल हो जाता है, उसके बाद उसको वार्ड में भेज दिया जाता है। तो इस तरह पेशेंट को यूजली 5-6-7 दिन में छुट्टी कर दी जाती है। अब जब पेशेंट को छुट्टी हो जाती है, स्टेबल हो गया पेशेंट,
हाँ, क्योंकि वहीं से हमारा रोल की शुरुआत होती है, क्योंकि परिवार वाले ऑटोमेटिकली उस चीज को ध्यान में रख करके कौन हर एक चीज का ध्यान दिया जाता है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से सो रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए अगर आप टिप्स दे पाए तो बहुत अच्छा होगा।
हमारे पास जो टीम होती है हॉस्पिटल में, यूजली सभी हॉस्पिटल में नहीं होता, जैसे हमारे अस्पताल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे से हमारी काउंसलिंग शुरू कर देते हैं पेशेंट को, हार्ट डिजीज के बारे में समझाना, तब डायबिटीज़ के बारे में बताना, ब्लड प्रेशर के बारे में बताना। पेशेंट जैसे थोड़ा बेटर हो जाता है, होश आ जाती है, दर्द खत्म हो जाता है, तो वी स्टार्ट काउंसलिंग। हम पेशेंट का एजुकेशन शुरू करते हैं डायबिटीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, हार्ट अटैक क्यों होता है, पेशेंट को धीरे धीरे इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको क्या हुआ था, सो दैट पेशेंट कैन कोप अप विद द प्रॉब्लम। शुरू में तुरंत नहीं बताते हैं, तुरंत नहीं, बाद में उसमें थोड़ा सा उसको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको ये तकलीफ हुई थी और आपको ये अब आप ठीक हैं, और अब आपको ये हम आपको बता रहे हैं हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट की पंपिंग कैसे होती है, आर्टरीज कैसे ब्लॉक होती हैं, अटैक क्या होता है, एंजाइना क्या होता है उनको शुगर इन्फॉर्म किया जाता है। अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, वो उसको वहीं इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देते हैं। और उसके मान लीजिए उसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनको वहीं पर उनकी काउंसलिंग भी शुरू कर देते हैं कि आपको आगे से ऐसा नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना, उदास नहीं होना, वो सब, ताकि उसको क्या क्या चीज़ से अचानक दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है
जी।
वो सब शुरू में ही उसको वहाँ इन्फॉर्म आईसीयू में हम शुरू कर देते हैं। मतलब ये आईडी स्पीकिंग ऐसे सेंटर्स में होना चाहिए, सो दैट हमने खाली फिजिकल इलाज नहीं करना है, बॉडी का नहीं करना, हमने उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का भी करना है, लाइफस्टाइल का भी करना है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज है, राइट। तो पेशेंट को, ताकि सारे मन में टेंशन खत्म होती चली जाए, तो जब 4-5-6 दिन में पेशेंट अपने घर जाए तो ही हैज़ इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा उसको मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं। पेशेंट धीरे धीरे 3-4 दिन बाद बाथरूम में जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर जैसे एडवाइस करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर पेशेंट को हम धीरे धीरे कमरे के अंदर ही मोबिलाइज करते हैं, कमरे में थोड़ा चल सकता है। फिर अगर पेशेंट कंडीशन कैसी है उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का पहले 3 घंटे में एंजियोग्राफी नहीं, एंजियोप्लास्टी नहीं हुआ, तो फिर कई बार पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा होता, तो हम 24 घंटे के अंदर ही अंदर पेशेंट को आगे रेफर कर देते हैं, ताकि उसकी एंजियोग्राफी करके पता लगा सके कि ब्लॉक कहाँ है और कितना है, राइट। कई बार पेशेंट को 4-5 दिन के बाद छुट्टी देते हैं, 6-7 दिन के बाद, फिर बाद में एंजियोग्राफी कराते हैं। नॉर्मली अगर पेशेंट स्टेबल है, हमारा ठीक हो गया, तो 2 हफ्ते बाद एंजियोग्राफी कराते हैं। 2 हफ्ते बाद एंजियोग्राफी करके पता करते हैं कि पेशेंट कितना ब्लॉक था, या 2 महीने या 1 महीने के बाद कराते हैं और उसमें एग्जैक्टली पता करते हैं। इको हम यूजली सेम डे कर देते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, उसमें हार्ट के कौन से एरिया में अटैक आया है, कितना बड़ा अटैक है, कोई खून में कोई क्लॉट तो नहीं है, हार्ट की दीवार के आसपास कोई क्लॉट तो नहीं जमा हुआ है
जी।
तो सारी बातें पता लग जाती है, कोई वाल्व लीक तो नहीं कर रहा है, हार्ट की पंपिंग पावर कितनी है, सारी बातें पता लग जाती है इको करने से। तो फर्स्ट डे या सेकेंड डे हम इको पेशेंट का आईसीयू में कर लेते हैं, तो फिर फर्दर उसको फॉलोअप भी कर सकते हैं कि हमारे इलाज से कितना इम्प्रूव हुआ, दूसरे दिन किया, फिर 4th दिन कर लिया, फिर 5वें दिन कर लिया, ऐसे इको से ईसीजी डेली करते हैं और इको से हम उसको चेक कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी एक्यूट इलाज की, ठीक है। अब पेशेंट की हम बाद में एंजियोग्राफी कराते हैं, ये करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। तो जब एंजियोग्राफी अब करी हमने, 5वें-6वें दिन करते हैं, या सो मैंने बताया 14 दिन के बाद करते हैं या महीने के बाद करते हैं, तो अब पेशेंट का वो ब्लॉकेज कितना है, राइट। पेशेंट का अगर सिंगल आर्टरी, एक ही आर्टरी में एक ब्लॉकेज है, और वो भी शुरू में ब्लॉक है, बाद में ब्लॉक है, राइट। हार्ट की पंपिंग पावर कितनी है, वो हम सब बातें देखते हैं, या मल्टीपल ब्लॉकेज, 3 आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं, तो उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि हम क्या करें, क्या प्लानिंग करें। पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, या पेशेंट का बाईपास प्लान करना पड़ेगा। आज 2 चीज़ें उपलब्ध हैं, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, ये मॉडर्न हार्ट केयर है। तो पहले तो था कि अभी 1980s में एंजियोप्लास्टी शुरू हुई, 90s में स्टेंट लगाना शुरू किया। एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, एक गाइड वायर डालते हैं हार्ट या राइट इलेक्ट्रिकल आर्टरी के थ्रू, या यहाँ से हम एक फेमोरल आर्टरी के थ्रू जाते हैं, उसमें एक गाइड वायर डालते हैं हार्ट की आर्टरी में, और उसके ऊपर एक बलून डाल देते हैं कैथेटर, और उस बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं जहाँ ब्लॉक होता है, उससे इन्फ्लेट करके वो ब्लॉक टूट जाता है, और वो क्योंकि फिर वो जैसे ही हम बलून हटाते हैं वापस वो सिकुड़ जाती है हार्ट, उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेंट डालते हैं, स्प्रिंग होता है स्टील का बना हुआ, आजकल तो बहुत सारे कार्बोमेटिक्स के भी आते हैं, बहुत सारे और दूसरे मटेरियल्स के भी बने हैं, तो वहाँ पर वो स्टेंट को फिक्स कर दिया जाता है। और फिर भी देखने में आता था 6 महीने के अंदर फिर भी 30-40% केसेस में दोबारा से ब्लॉक हो जाते थे।
अच्छा,
किंतु अभी नए जो स्टेंट्स आए हैं वो मेडिकेटेड स्टेंट्स, जिसे हम ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स कहते हैं,
ओके,
उन पर ड्रग कोट की जाती है ताकि उस एरिया में वापस ब्लॉक ना बने, राइट। तो अभी वो जो 30-40% के बजाय 5-10% हो गया, चांसेस ऑफ री ब्लॉकेज, रीस्टेनोसिस कहते हैं, इंस्टेंट स्टेनोसिस कहते हैं, तो वो आजकल वो हम मेडिकेटेड स्टेंट्स यूज करते हैं। फिर भी एंजियोप्लास्टी जो हम करते हैं, इसमें हम रिसर्चेस हुई हैं काफ़ी सारी 2007 के बीच में
जी।
कई ट्रायल्स आए, करेज ट्रायल आया, ओक ट्रायल आया, मास्टू ट्रायल, ऐसे लैंडमार्क स्टडीज हैं जो बताती हैं कि एंजियोप्लास्टी अगर हम एक्यूट केयर में करें, 3 घंटे के अंदर करें, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वो लाइफ सेविंग है। ये तो 3 घंटे के बाद जो 24 घंटे में करते हैं, 3 से 24 घंटे के बीच में करते हैं, उसके रिजल्ट लगभग मेडिकल ट्रीटमेंट के बराबर ही हैं। और 24 घंटे के बाद जो एंजियोप्लास्टी करते हैं एक्यूट, वो जो उसके के बाद 24 घंटा बीतने के बाद करते हैं, उसके रिजल्ट्स उसमें क्या होता है, बल्कि चांसेस ऑफ दोबारा हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पे रहते हैं।
ओके,
मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस ब्लड प्रेशर डायबिटीज को अच्छा कंट्रोल कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करिए, रोज सैर करिए और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए।
करेक्ट,
स्ट्रेस फ्री हो जाइए, मेडिटेशन करिए, डाइट एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर लीजिए, समय पर सोइए, समय पर उठिए, स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, अल्कोहल लेना बंद कर दीजिए। अगर आप ये कर लेते तो आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे एंजियोप्लास्टी के से भी।
ओके, तो कहीं ना कहीं अगर लाइफस्टाइल को बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं,
ऐसा मतलब देखने में आया है जो रिसर्च बता रही है।
हाँ जी,
ऐसा देखने में आया।
ओके,
फिर जो है दूसरा जो इलाज है ये तो एंजियोप्लास्टी हो गया आज का जो ऑफर करते हैं, जबकि मैं अगर बताऊं आपको, अगर मैं एक उन्हीं दिनों की बात, जब ये रिसर्च पब्लिश हुई थी 2006 में उस साल अमेरिका में 13 लाख एंजियोप्लास्टी हुई थी।
13 लाख?
हाँ, अमेरिका में लगभग 20 लाख लोगों को हार्ट अटैक एक साल में पड़ते हैं और भारत में लगभग 60 लाख लोगों को हार्ट अटैक एक साल में।
ये तो काफ़ी बड़ी मात्रा है।
और अमेरिका में लगभग 13 लाख लोगों को एंजियोप्लास्टी एक साल में कर देते हैं और लगभग 4.5 लाख लोग, 4.5-5 लाख लोगों के बाईपास कर देते हैं। 20 लाख में से कितने लोग, 17-17.5 लाख लोगों का कुछ ना कुछ एंजियोप्लास्टी बाईपास कर देते हैं। भारत में 60 लाख लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं एक साल में और उसमें से हम सिर्फ 1-1.5 लाख एंजियोप्लास्टी होती है, 1 लाख बाईपास होती है
और बाकी
कुछ भी नहीं कर सकते।
ओके,
हमारे देश में मतलब हार्ट अटैक ज़्यादा है, फैसिलिटीज कम है।
तो क्या वो डेथ रेट पे चले जाते हैं?
मतलब डेथ्स भारत में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अब डिस्कस करूंगा आगे, कि कुछ बातें हैं जो भारत में अलग हैं अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोपियन कंट्रीज से, कुछ सिचुएशंस अलग हैं भारत में, तो वो हमारा डिफरेंस है। मतलब हम अपने आप को कंपेयर करें यूएसए के साथ या यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, नहीं हो सकता। मैं आपको सामने फिगर इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप हमारे दर्शकों को समझ रहे कि हम कहाँ पर हैं और क्या हम कर रहे हैं। राइट, तो भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 130 करोड़ लोग हैं, अमेरिका में 25 से 30 करोड़ लोग हैं, तो उनके पास इतनी सुविधा है, 20 लाख लोगों के हार्ट अटैक के लिए उनके पास
इतनी फैसिलिटीज हैं
है। तो लगभग $104 बिलियन एक साल में खर्च करते हैं वो, $104 बिलियन सिर्फ एंजियोप्लास्टी बाईपास करने में। उसके बाद भी ये देखने में आया कि ना एंजियोप्लास्टी से करने से या बाईपास करने से उनके यहाँ मृत्यु दर कम हो गई हो, हार्ट अटैक ऐसा नहीं है। एंजियोप्लास्टी करने से लोगों की कोई मृत्यु कम हो गई हो या उनके हार्ट अटैक आने कम हो, ऐसा नहीं। बाईपास करने से कोई ऐसा फायदा हुआ हो, ऐसा नहीं। राइट, हाँ, उनके यहाँ क्या हो गया कि उनके यहाँ हार्ट अटैक से बच जाते हैं, बाईपास करा के, एंजियोप्लास्टी करा के लंबा समय जी लेते हैं। वो 60 में हार्ट अटैक आया, 65 में, 70 में आया, तो वो 80 साल तक जी लेंगे, पर उनको हार्ट फेलियर ज़्यादा होते हैं।
अच्छा,
उनको फिर पेसमेकर लगाने पड़ते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो एजिंग पॉपुलेशन हो गई ना ज़्यादा, तो उनके फिर हार्ट फेलियर ज़्यादा होते हैं, उनके सामने एक नई समस्या आ गई। तो हार्ट मतलब हार्ट का कोई इलाज हो गया हो ऐसा नहीं है
जी।
वो हार्ट पेशेंट आज भी हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा सीरियस हार्ट पेशेंट्स। राइट
जी,
तो समस्या फिर ये हो जाती है। तो भारत में जो है क्या समस्या, कुछ दूसरे तरह से क्या है कि भारत में जो डिजीज है ना, हार्ट डिजीज है, हार्ट की जो आर्टरीज है ब्लॉकेजेस होते हैं, वो लंबे लंबे ब्लॉक होते हैं।
अच्छा,
डिफ्यूज डिजीज होती है और ऐसे ब्लॉक होते हैं जहाँ ना एंजियोप्लास्टी हो सकती है ना बाईपास हो सकता है। 54% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एंजियोप्लास्टी बाईपास सक्सेसफुल नहीं होती, और विदेश में ये संख्या सिर्फ 20-21% है।
और समस्या अलग होगी ना,
और बीमारी सबसे ज्यादा भारत में नंबर वन है।
बिल्कुल,
हार्ट अटैक के, हार्ट डिजीज के सबसे ज्यादा पेशेंट भारत में है, लीडर है भारत विश्व का हार्ट की डिजीज के बारे में।
कोई स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे?
इसका रीजन दो तीन रीजन हम ले सकते हैं। एक तो हम कभी कहते हैं जीन भी है, हालांकि वो क्वेश्चनेबल है, ऐसे कुछ 50 जीन है जो भारत के लोगों में ज्यादा पाया जाता है।
अच्छा।
क्योंकि भारतवासी जहाँ भी हैं, भारत में है चाहे अमेरिका में है चाहे सिंगापुर में है चाहे मलेशिया में है चाहे हांगकांग में है चाहे ब्रिटेन में है, कहीं भी है भारतवासी या भारत में, उनको सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। और यंग लोगों को 10 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक है वेस्टर्न की बजाय।
अच्छा।
तो ये सिचुएशन भारत की है
जी।
और भारत में जो बीमारी में था ये रिफ्यूज़ है, लंबे लंबे ब्लॉक्स हैं, प्लस भारत में फैसिलिटीज़ कम है। डेवलपिंग पॉपुलेशन है ना, डेवलपिंग वर्ल्ड है ना हमारा, डेवलपिंग वर्ल्ड में आते हैं हम लोग, डेवलपिंग नेशन है हमारी। तो भारत में अभी जैसे कितने, हालांकि इतनी सारी कैथ लैब्स खुल रही हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज खुल रही हैं, तो भारत में तो आम आदमी तो गांव में रहता है, शहरों में भी रहता है, तो हमारे पास इतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं। तो हमारे यहाँ जो है वो इतनी एंजियोप्लास्टी हम कर नहीं सकते हैं। मैंने बताया 1.5 लाख के आसपास एंजियोप्लास्टी हम एक साल में करते हैं, 1 लाख के आसपास बाईपास कर पाते, तो 2.5 लाख ही कवर हुए ना।
बिल्कुल।
और ये जो है एंजियोप्लास्टी बाईपास का परमानेंट इलाज भी नहीं है, ये सिर्फ पेलिएशन है। हमने एंजियोप्लास्टी कर दी पर ब्लॉक हुआ क्यों था, उस आदमी के अंदर आर्टरी में ब्लॉक क्यों हुआ था, वो क्रैक क्यों हुई आर्टरी, हार्ट अटैक क्यों हुआ,
उसका रीजन जानना जरूरी है।
सबसे मतलब सबको, जिनको आर्टरीज ब्लॉक, सबको हार्ट अटैक नहीं आते।
बिल्कुल।
उसको हार्ट अटैक उस दिन क्यों आया, ये हमें समझने की बात। ऐसा क्या ट्रिगर था उसके अंदर वो हार्ट अटैक आया, वो ट्रिगर अगर जब तक ठीक नहीं हुआ तो बार बार हार्ट अटैक आता रहेगा।
तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब?
नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन है ना, मतलब आगे सॉल्यूशंस हैं इसके बारे में, हम आगे डिस्कस करेंगे। कि आज के सामने समस्या ये है कि हम ट्रिगर को हटा नहीं पाते, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, वो ट्रिगर होने के कारण आज भी उस आदमी के अंदर वो ट्रिगर है, वो फैक्टर है जिसके कारण एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी हार्ट अटैक आते रहते हैं। कई लोग तो क्या होते हैं, अगले इस साल एंजियोप्लास्टी कराई, 6 महीने में फिर एंजियोप्लास्टी कराई, फिर उसके अगले साल फिर एंजियोप्लास्टी, फिर उसके बाद फिर एंजियोप्लास्टी। तो ऐसे पेशेंट मेरे पास इनके 10-10, 12-12 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, हर साल एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है, और उसके बाद वो सिम्टम फ्री नहीं है, तकलीफ है उनको, चल नहीं पाते आज भी, हार्ट की पंपिंग धीरे धीरे और कम होती जा रही, पहले 40 थी, फिर 35 हो गई, 30 हो गई, 25 हो गई, 20 हो गई, अभी हार्ट फेल हो गया, 15% रह गई, फिर पेसमेकर लगवाना पड़ा और लाइफ बेड रिडन जैसे हो गए, 8 स्टेंट लगने के बाद भी, फिर बाईपास भी करा लेते हैं, बाईपास के बाद भी ठीक नहीं होते।
तो इसका कोई
कारण क्या है, इसका कारण हम लोग
अगर हम रूट कॉज को जान लेंगे,
रूट कॉज जाने तो हमें समझ में आया कि क्या कारण है ना।
करेक्ट।
तो इसलिए आज बाईपास एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी हमारी ये बीमारी की स्थिति जो की त्यों है, सफरिंग जो की त्यों है, रूट का इलाज नहीं कर रहे हैं, इसलिए जैसे पेड़ को ऊपर से काट दिया आपने, और हम फिर उम्मीद करते कि हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा
जी।
नहीं हो पाता है, तो हमारे फिर वो वहीं कहीं खड़े रहते हैं, हाथ पैर तो बहुत मारे, पैसे भी खर्च कर दिए है ना, और एंजियोप्लास्टी भी हो गई बहुत सारी है ना, पर रिजल्ट
कुछ
बहुत अच्छा नहीं आता। कुछ लोग जो अपने आप को बदल लेते हैं,
अच्छा,
अपना जीवन इस तरह समझ जाते हैं कि हमारे ये हार्ट अटैक क्यों आया, एक मैसेज देने के लिए आया, तुम गलत हो, तुम्हारा जीवन में कुछ गलत है, इसको परिवर्तन कर। तो वो व्यक्ति तो उसको हार्ट अटैक बाईपास लंबा समय काम करता है, एंजियोप्लास्टी लंबा समय काम करती है। जो अपना खान पान बदल लेते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल छोड़ देते हैं, रोज़ सैर करना शुरू करते हैं, समय पर सोना, समय पर उठना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ले आते हैं
जी,
वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाते हैं। किंतु जो काफ़ी लोग बदलते नहीं हैं या बदलना नहीं चाहते, उनका फिर बाईपास एंजियोप्लास्टी उसका कोई फ़ायदा नहीं करता।
ओके,
राइट
डॉक्टर साहब, और कौन से ऐसे इलाज है जिसके द्वारा हम हार्ट डिजीज से बाहर निकल सकते हैं?
आजकल वैसे तो हम लोग आजकल स्टैटिन्स हम कहते हैं, स्टैटिन्स होते हैं जो ऐसी दवाइयां जो कोलेस्ट्रॉल को लो करती हैं,
अच्छा,
और ब्लड क्लॉट को भी होने से रोकती हैं, तो उनको हम स्टैटिन्स कहते हैं। आजकल तो वे ऑफ लाइफ है स्टैटिन्स का, डॉक्टर जब भी आपके पास डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे स्टैटिन्स को, एस्पिरिन प्रेस्क्राइब करेंगे, कुछ ना कुछ दूसरी क्लॉटिंग एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन होती हैं, लोपिडोग्रल या प्रासुग्रल दूसरी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ की मेडिसिन अच्छी तरह से, हमारा ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ ठीक कंट्रोल होना चाहिए वो मेडिसिन हमें खानी चाहिए, एंजाइना को ठीक करने के लिए ड्रग्स को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, डोजेस को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो ये दवाई हमें रेगुलर लेनी होती है, पहले छोड़ना नहीं होता है। किंतु और भी कुछ दवाइयाँ जो कुछ लोगों ने शुरू की, जैसे कुछ लोग कीलेशन थेरेपी करते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगा, साइंटिफिकली उसका कोई एविडेंस नहीं कि उससे ब्लॉक खुलते हैं। हालांकि वो लोग क्लेम करते हैं कि उससे ब्लॉक खुलते हैं, पर साइंटिफिकली उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिसर्च में उसका कोई एविडेंस नहीं है कि उससे हमारे किसी के ब्लॉक खुलते हैं। तो इसमें अपना पैसा बर्बाद ना करें। मैं दर्शक चाहूँगा कि कहीं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं इलाज को, उससे कोई पक्का इलाज नहीं होता है, बल्कि साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और कई बार मृत्यु का भी डर रहता है।
अच्छा,
तो ये जो है ऑफर जो मार्केट में जैसे चलती है, उसके बारे में क्लियर लोगों को होना चाहिए। दूसरी तीसरी बात जो है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लौकी का रस पीने से ठीक हो जाते हैं, नहीं, वो भी इसका इलाज नहीं है। तीसरी जो बात कहते हैं लोग, अर्जुन की छाल का रस पी लो, अर्जुन की छाल होती है ना जो, उसको उबाल करके पी लेते हैं, ऐसी कुछ दवाइयाँ आयुर्वेदिक में अवेलेबल हैं, वो भी इसका सही इलाज नहीं है। कुछ मदद कर सकता है किंतु सही इलाज नहीं है। होम्योपैथी के बारे में मैंने स्टडी किया है, उसमें भी कोई ऐसी सिग्निफिकेंटली उस बीमारी को ठीक करे ऐसा इलाज नहीं है। क्योंकि मेडिकल साइंस में पता लगा कि किस तरह से हमारे जो अंदर की लाइनिंग है, एंडोथेलियम
जी,
अंदर की जो लाइनिंग है, कैसे वो हमारे ब्लॉक कैसे डेवलप होते हैं, उस प्रोसेस को रिवर्स करने की आवश्यकता है। और इन चीज़ों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, राइट? और अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिस जीवन शैली से हमारे उस एरिया में ब्लॉक हुआ है
जी।
तो वो ब्लॉक क्यों हुआ है, उसके कारण को निवारण करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो सिम्टोमेटिक हैं, सिम्टोमेटिक में ना उस कुछ समय के लिए उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई दी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, दवाई का असर खत्म होते क्या होगा,
फिर
वो बीपी बढ़ जाएगा। शुगर की दवाई दी, आज हमने इंजेक्शन लगाया इंसुलिन का, गोली खाई और हमने परहेज किया, शुगर ठीक कंट्रोल में, कल आप कुछ गलत खा लीजिए या इंजेक्शन मत लगाइए, गोली मत खाइए, कल शुगर 400 हो जाएगी। सिम्टोमेटिक हुआ ना
जी,
जड़ का इलाज तो नहीं हुआ। डायबिटीज क्यों हो रही, कैसे हो रही है, ऐसे हमारी आर्टरीज ब्लॉक हुई, आर्टरीज का हमने उसका एंजियोप्लास्टी कर दी, बाईपास कर दी, स्टैटिंस दे दी, तो उससे क्या होगा, वो ब्लॉक तो वहीं, हमने साइड में लगा दिया या उसको बाईपास कर दिया, तो डिजीज तो वहीं है। फिर जो हमारा प्रोसेस है अंदर जिससे ब्लॉक हुआ था, वो तो फिर वो ऑन है ना,
करेक्ट?
तो बाईपास ग्राफ्ट को बंद कर देगा या एंजियोप्लास्टी उसके आगे ब्लॉक हो जाएगा,
बिल्कुल।
इस तरह से वो ब्लॉक होता रहेगा। जैसे मान लीजिए किचन का आपका पाइप है, ड्रेनेज पाइप है, उसमें जो है आप अपने मान लीजिए रोज कचरा डालते जाए, तो क्या वो तो फिर पाइप तो ब्लॉक होगा ना। भले एक बार आपने खोल दिया उसको पाइप से डाल के, तो खोल दिया, किंतु वापस आप कचरा डालते जाए रोज, तो क्या होगा,
करेक्ट?
फिर चोक हो जाएगा ना। तो आपको देखना है कि दोबारा चोक हुआ क्यों, पाइप वो चोक क्यों हुआ, तो हम ऊपर से कचरा डालना बंद करें ना,
करेक्ट?
तो वो हमको देखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमें इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। हम जब गहराई में जाएंगे तो इन सब कारणों को जानेंगे, मन के ऐसे कौन से कारण हैं, हमारे खान पान में ऐसे कौन से कारण हैं, हमारे सोच में, हमारे देखने में क्या गलत कारण है, क्या सुनने में गलत कारण है, क्या बोलने में गलत कारण है, ऐसे कौन से कर्म करते हैं जिससे हमारी ब्लॉकेज होती है, जीन्स का क्या रोल है, और गहराई से समझेंगे क्या जीन्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सब कारण हम जानेंगे।
डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लगी कि कोई भी जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है आज हमारी मेडिकल साइंस में, कहीं ना कहीं वो टेम्पररी है, वो पूरी तरीके से परमानेंट इलाज नहीं है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, तो अगर बार बार प्रॉब्लम आएगी तो हमें बार बार स्पेंड करना पड़ेगा, तो ये परमानेंट इलाज है नहीं। आने वाले एपिसोड्स में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा वो परमानेंट तरीका है जिससे हम हार्ट डिजीज़ से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो।
ओम शांति।
ओम शांति। दोस्तों, आज हमने हार्ट डिजीज़ के बारे में जाना, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि किस तरह से मॉडर्न ट्रीटमेंट वो परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन परमानेंट इलाज के बारे में जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।